आयु जिस डॉक्टर सिंघानिया से मिलने की जिद कर रही थी वो कोई और नहीं, आरव और आयु का बेटा आर्य ही था। पहले आरव ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन जब एक और डॉक्टर के मुंह से आरव ने आर्य का नाम सुना तब आरव ने आर्य की तरफ गौर से देखा। उन दोनों की आंखें और फोरहेड बिल्कुल एक जैसे थे। आर्य से मिलने के बाद वो उसे लेकर आयु के साथ हॉस्पिटल पहुंच चुका था। आरव और आर्य ने अभी आयु को सच नहीं बताया था। आर्य ने आयु को हक कर रखा था, तभी आयु को कुछ विजुअल्स दिखाई दिए और वो आर्य की बाहों में बेहोश हो गई थी। आयु के बेहोश होने पर आर्य घबरा गया। उसने जल्दी से आयु को संभाला और आरव की तरफ देखकर कहा, ये क्या हुआ इन्हें, ये बेहोश कैसे हो गई और आप इतनी रिलैक्स क्यों हो? आरव उसकी तरफ पढ़ते हुए बेपरवाही से बोला, मैं रिलैक्स इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है ये बेहोश क्यों हुई है, लेकिन तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? तुम तो खुद एक डॉक्टर हो, चलो इसे बेड पर लेटाओ। आरव के कहने पर आर्य ने आयु को बेड पर लेटा दिया था। वो उसका टेम्परेचर चेक करने लगा तो उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी थी। आर्य को परेशान देखकर आरव ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर धीरे से कहा, घबराओ मत, इसने कहा ना तुम्हारा टच जाना पहचाना है, इसका मतलब जब ये तुम्हारे क्लोज आई थी तब इसे पास्ट से जुड़ा हुआ कुछ याद आया होगा। जब भी उसे कुछ याद आता है तब इसी तरह इसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है और ये बेहोश हो जाती है। आर्य ने उसकी बात पर हामी भरी। वो कुछ कहता उससे पहले आरव ने फिर से कहा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा, चलो तब तक हम बात करते हैं। अगर ये होश में आ गई और इसके सामने कुछ बोला तो ये सवालों की झड़ी लगा देगी। आप मेरी मॉम से इरिटेट हो रहे हो, आर्य ने भौंय उठाकर कहा। उसकी शक्ल भले ही काफी हद तक आरव से मिलती हो लेकिन उसकी स्माइल और नाक बिल्कुल आयु की तरह था और एटीट्यूड भी बिल्कुल उसी की तरह। तुम्हारी मॉम से इरिटेट नहीं हो रहा, बस इसकी इस पर्सनैलिटी से हो रहा हूँ। बाकी मुझे भी उस दिन का इंतजार है जब आयु को सब कुछ याद आएगा, आरव ने शांति से जवाब दिया। वो आर्य के साथ वहां लगे काउच पर बैठ चुका था। कुछ देर तक दोनों के बीच एक अजीब चुप्पी छाई रही, फिर अचानक आरव बोला, तो तुमने अपना सरनेम चेंज कर लिया? हाँ, क्योंकि चाचू ने मुझे लीगली अडॉप्ट किया था, अब उनका सरनेम सिंघानिया है तो मेरा सरनेम अपने आप चेंज हो गया, आर्य ने जवाब दिया। तो अयान अब तुम्हारा डैड है? सही है, हमारे जाने के बाद उसने तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखा होगा और मेरी जगह भी ले ली होगी, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, आरव ने कहा। एक तरफ जहाँ उसे इस बात की तसल्ली थी कि अयान ने आर्या का पूरा ख्याल रखा था, तो वहीं दिल ही दिल में उसे बुरा भी लग रहा था कि आर्या की लाइफ में अब उसका डैड अयान बन चुका था। आर्या ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर आरव की तरफ देखकर कहा, नहीं, वो हमेशा मेरे चाचू ही रहेंगे, मेरे डैड तो, आर्य बोलते हुए रुक गया। फिर उसने आरव की तरफ देखकर कन्फ्यूजन से कहा, समझ नहीं आ रहा आपको किस नाम से बुलाऊं, आपका नाम लेना मेरे लिए ऑकवर्ड हो जाएगा, मिस्टर खुराना काफी फॉर्मल है। वही कहो जो मैं तुम्हारा हूँ, टाइम, चीजें और बॉडी बदल गई होगी लेकिन इमोशंस नहीं, मैं तुम्हारा डैड था और वही रहूंगा, आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर आर्या को अपने सीने से लगा लिया। उन दोनों की आंखें नम हो रही थी। आरव जहां अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल किए हुए था, वहीं आर्या की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। उसने भारी आवाज में कहा, मैंने आपको बहुत मिस किया डैड, और मॉम को भी, मेरी तो पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी थी, अरीशा भी नहीं रही, इतनी मुश्किल से मैंने अपनी मॉम को पाया था लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं आपके साथ एडजस्ट कर सकता था, एटलीस्ट आप मेरे लिए रुक सकते थे, सब यही कहते थे कि आपने जानबूझकर अपनी जान दी थी, आपको एक बार भी मेरा ख्याल क्यों नहीं आया? हाँ, थोड़ा सेल्फिश हो गया था और आखिरी सांस तक यही उम्मीद थी कि तुम्हारी मॉम और अरीशा को बचा लूंगा, पर नहीं बचा पाया, आरव ने आर्या से अलग होकर जवाब दिया। आर्या की आंखों में कई शिकायतें थीं पर अब वो आरव से कुछ कहना नहीं चाहता था। आर्या ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह अपने दिल की बात कहने का कभी मौका भी मिलेगा, प्लीज़ अब कभी मुझसे दूर मत जाइएगा और मॉम को भी मत जाने दीजिएगा, आपको सब याद है तो आप हमारे घर पर चलिए ना, आप क्यों किसी और के घर पर रह रहे हो? वो भी मेरी फैमिली है आर्या, मेरे खुद के मॉम, डैड, दादी, भाई सब हैं, आई कांट लीव देम, बट इससे हमारा रिश्ता नहीं बदल पाएगा, आरव ने जवाब दिया। कुछ देर तक अपने इमोशंस एक दूसरे से शेयर करने के बाद आर्या की नज़र आयु पर पड़ी जो अभी भी सोई हुई थी। उसने आरव की तरफ देखकर पूछा, आप तो मॉम को काफ़ी टाइम से जानते होंगे ना, कब हुई आप दोनों की शादी? इन्होंने कहा, आपने उनसे ज़बरदस्ती शादी की थी, मतलब आपको हमेशा से सब कुछ याद था। हम एक दूसरे को पिछले 20 दिनों से जानते हैं, मैंने किसी डॉक्टर के जरिए एक थेरेपी करवाई थी जिससे मेरी याददाश्त वापस आ गई, आरव ने बताया। ये डेंजरस है डैड, आपकी जान भी जा सकती थी, आर्या ने चौंकते हुए कहा। हाँ जानता हूँ, पर जैसी लाइफ में बिता रहा था उसके बाद अगर मेरी जान चली भी जाती तो मुझे कोई गम नहीं होता। खैर, ये सब बातें नहीं करनी है मुझे आर्या, मुझे बताओ तुम लोग कहाँ रह रहे हो और मेरी कंपनी और घर को तुम लोग बेच भी कैसे सकते हो? बोलते हुए आरव थोड़ा गुस्सा हो गया। आर्या उसकी नाराजगी समझ सकता था। आरव के लिए खुराना मेंशन और खुराना इंडस्ट्रीज दोनों ही बहुत मायने रखती थी। उसने आरव की तरफ देखकर धीरे से कहा, बेचा नहीं है, बस कोई संभालने वाला नहीं था तो चाचू ने घर को बंद कर दिया और इंडस्ट्रीज को किसी को रेंट पर दे दिया था। उसने वहां मॉल बनाना चाहा तो चाचू ने परमिशन दे दी थी और आपके जाने के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इंडस्ट्रीज की जगह वहां क्या बनता है। माहिरा आंटी ने मुझे ले जाने की बहुत कोशिश की पर चाचू ने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए इंडिया ही छोड़ दिया था और कुछ टाइम के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। अब हम दिल्ली में सेटल हो चुके हैं। आर्या ने आरव को सब कुछ बता दिया था। और कबीर, वो कहाँ है? आर्या, मुझे अपने घर पर जाना है। तुम्हें नहीं पता वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं और मुझे माहिरा से बदला लेना है। वो फिर से मेरी लाइफ में आ गई है। उसे तुम्हारी मॉम के बारे में पता नहीं है। उसके पता चलने से पहले मुझे अपने घर जाना होगा और वहाँ रखे कुछ डॉक्यूमेंट निकालने हैं। इसके लिए मुझे कबीर की ज़रूरत पड़ेगी, आरव ने कहा। वहीं आरव के मुंह से फिर से माहिरा का नाम सुनकर आर्या थोड़ा गुस्सा हुआ। वो वहां से उठते हुए बोला, डिस्कस्टिंग डैड, जिस औरत की वजह से आपकी जान गई, मैंने अपनी पूरी फैमिली खो दी, आप उसी के बारे में सोच रहे हो? आपको मॉम को उस माहिरा लूथरा से प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि अभी भी उसके पीछे जाना। इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता मैं। तुमने अपना सब कुछ खोया था तो मैंने भी अपना सब कुछ खोया था। नई जिंदगी मिली जरूर है, पर जहां पुरानी यादें धुंधली हों वो जिंदगी बहुत दर्द भरी होती है, आरव ने जवाब दिया। दोनों के बीच थोड़ी बहस होने लगी थी। जहां आरव माहिरा से बदला लेने की जिद पर अड़ा था तो वहीं आर्या उसे माहिरा से दूर रहने का कह रहा था। दोनों में से कोई कुछ भी कहता तभी आयु की आंख खुली। उसने देखा आरव और आरव एक दूसरे के सामने खड़े हैं और गुस्से से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? आयु ने हैरानी से कहा। तो उन दोनों ने आयु की तरफ देखा और इस वक्त दोनों के चेहरे पर ही जबरदस्ती की मुस्कुराहट थी। तुम्हें होश आ गया मिसेस खुराना? तुम ये बार बार बेहोश क्यों हो जाती हो? हमेशा से बीमार डॉक्टर ही रहोगी, आरव आयु के पास बढ़ते हुए बोला।
उसकी इस हरकत पर आर्य ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, मतलब इन्हें अभी भी मेरी मॉम को परेशान करना होता है? ये हर बार अपनी मनमानी क्यों करते हैं यार? मुझे इन पर गुस्सा आ रहा है। उम्र में मुझसे छोटे हैं पर फिर भी मैं कुछ कह नहीं सकता। आर्य वहां खड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने देखा आयु उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रही थी। उसने फिर आरव की तरफ देखकर कहा, आरव, जब मैंने डॉक्टर सिंघानिया को हक किया तो मुझे अजीब सा कुछ दिखा, जैसे मैं एक बच्चे के गले लगी हुई हूँ। उसकी आंखें भी बिल्कुल तुम्हारी और डॉक्टर सिंघानिया की तरह थीं। वो हमारा बेटा था क्या? तुमने बोला हमारे ट्विन्स थे, जिसमें से बेटी की डेथ हो गई थी, तो वो दूसरा चाइल्ड लड़का था क्या? आयु के सवाल फिर से शुरू हो गए थे। आर्य वहां लाचारी से उसकी तरफ देख रहा था। आयु उसी के बारे में बात कर रही थी और वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। आरव जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहा था उससे आर्या को यही लगा कि आरव उसे कभी नहीं बताएगा कि उसका और आर्या का क्या रिश्ता है।